हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दूसरी तरफ से नैना की आवाज़ सुनकर सुनैना अपने ख्यालों से बाहर आई। एकदम सामान्य होकर वो हंसते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप प्लीज टेंशन मत लो। सुनैना ने भले ही सामान्य आवाज़ में बात किया, लेकिन उसके रुक रुक कर बोलने से नैना को कुछ गड़बड़ लगने लगा। उसने पूछा, सोनू सच में सब ठीक है ना, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? हाँ हाँ दी, सब ठीक है, अभी मैं यहाँ ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट वर्क में बिजी हूँ, इसलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगी। डोंट वरी, आप ज्यादा टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। इतना बोलते हुए सुनैना ने नैना की बात सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने अपना फ़ोन सीने से लगाकर कहा, आई एम सॉरी दी, आपकी सोनू आपसे झूठ बोल रही है, लेकिन मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताना चाहती, आप मेरी इस उलझी हुई लाइफ से दूर रहो तो ही आपके लिए अच्छा है, और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। ऐना की धीमी आवाज़ सुनकर रवि ने पीछे मुड़कर देखा। सुनैना ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और रवि से पूछा, रवि इनसे बोलो गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाएं, मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है, मैं नहीं चाहती कि आदित्य वहां पहुंच जाए जहां उसे जाना है। सुनैना की बात सुनकर रवि ने सिर हिलाया और टैक्सी वाले को तेज चलाने को कहा, पर टैक्सी वाला पहले ही अच्छी खासी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। दूसरी तरफ आदित्य के घर के पास अक्षत और नैना अपनी कार में थे। अक्षत कार से बाहर खड़ा था और नैना उसके सामने। सुनैना का कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद नैना हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसे इस तरह देखकर अक्षत ने पूछा, क्या हुआ, क्या बोला सुनैना, सब ठीक है ना? अक्षत के सवाल पर नैना कहीं खोई सी बोली, पता नहीं, उसने बोला कि सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, और ऐसा क्यों लगा तुम्हें? अक्षत ने पूछा। आई डोंट नो, सोनू की आवाज़ और वो काफ़ी रुक रुक कर मेरी बातों का जवाब दे रही थी, मुझे लगा वो कुछ सोच रही है या फिर शायद बहुत कुछ। आई एम सो कन्फ्यूज्ड राइट नाउ। डोंट वरी, इतना मत सोचो, अगर वो कह रही है कि सब ठीक है तो तुम्हें भी उस पर भरोसा करना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ज़रूर तुम्हें बताएगी। नैना के कंधे पर हाथ रखकर अक्षत ने उसे समझाया। नैना ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे दोनों वहां से निकल गए। एयरपोर्ट पर सुनैना पहुंची तो उसने देखा कि अनय मायूस होकर मुंह लटकाए अपनी कार की तरफ आ रहा है। उसे देखकर सुनैना का दिल घबराया। वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन एयरपोर्ट गेट से अंदर जाने से पहले उसने अनय से पूछा, अनय आदित्य कहाँ है वो इस वक्त और तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? उसकी लंदन की फ्लाइट थी जो अभी 10 मिनट पहले निकल गई। मैं यहाँ समय से पहुँच गया था, लेकिन मेरे पास बोर्डिंग पास और टिकट कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया, अनय ने उदासी भरी आवाज़ में जवाब दिया। ये सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। आदित्य लंदन? लेकिन वो लंदन क्या करने जाएगा? अनय मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है, वो कहीं नहीं गया है, वो यहीं है इसी शहर में, मेरा दिल कह रहा है वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उसने अनय की बात को नकारते हुए कहा। अब तुम मानो या नहीं, लेकिन यही सच है, तुम्हारी शादी अभी हुई है इसलिए तुम उसे नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो ऐसा ही हो गया है, हमेशा हर किसी से भागता रहता है, शायद अब वो तुमसे भी दूर चला गया, अनय ने कहा। उसके पेरेंट्स की डेथ? लेकिन उस बात को तो काफी समय हो गया है ना, और वो लंदन क्या करने गया है? एक मिनट, हो सकता है वो अपनी बीमारी का इलाज करवाने गया हो। हाँ हाँ ये हो सकता है, रवि तू पता कर, सुनैना ने खुद को झूठी उम्मीद देते हुए कहा। मैम प्लीज आप अपने आप को संभालिए, अगर वो यहाँ अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं तो क्या वो लंदन अपना इलाज करवाने जाएंगे? वो अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते, रवि ने सुनैना को समझाया, लेकिन वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। ओहो, अब इसमें बेचारे आदित्य सर की भी क्या गलती है, अब तुम्हारे जैसी बहू हो तो बंदा छोड़कर भाग ही जाएगा। पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, उन्होंने पलट कर देखा और रवि के अलावा सुनैना और अनय दोनों ही उस लड़की को पहचान नहीं पाए। लड़की ने एयरपोर्ट लुक से ज्यादा ही छोटे कपड़े पहने हुए थे, घुटनों से ऊपर तक आती हुई व्हाइट स्कर्ट, उसके ऊपर ऑफ शोल्डर लाइट ब्लू टॉप, हाथ में व्हाइट ग्लव्स, बड़ी सी हैट, सनग्लासेस, छोटा डिजाइनर पर्स और बूट वाले हील्स। वो अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकली थी। अनय और सुनैना कन्फ्यूज्ड थे, लेकिन रवि के चेहरे पर उस लड़की को देखकर गुस्सा सा दिख रहा था। सुनैना समझ गई कि रवि उस लड़की को जानता है। इससे पहले कि वो रवि से कुछ पूछ पाती, रवि आगे बढ़ा और लड़की को वार्निंग देते हुए बोला, नताशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेंटल हॉस्पिटल से बाहर कब आई? और तुम्हें हमारी बात के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अगर दोबारा मेंटल हॉस्पिटल वापस नहीं जाना चाहती हो तो। यू ब्लडी असिस्टेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? शायद तुम भूल रहे हो, अब मैं उस ऑफिस में काम करने वाली तुम्हारी जूनियर नहीं हूँ, मैं नताशा सेठी हूँ। और रही बात मेंटल हॉस्पिटल की, तो मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि किसी से प्यार करना पागलपन नहीं होता, नताशा ने एटीट्यूड में जवाब दिया। नताशा का नाम और रवि की बातें सुनकर सुनैना समझ गई कि ये वही लड़की है जिसके बारे में आदित्य ने उसे बताया था। प्यार करना पागलपन नहीं होता, लेकिन जिस तरह से तुम आदित्य सर के पीछे पड़ी हुई थी वो जरूर पागलपन ही है, इसलिए जाकर अपना इलाज कराओ पहले, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। और मैडम, आप चलिए यहाँ से, हमें यहाँ रुककर इस लड़की की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। रवि ने नताशा को जवाब दिया और सुनैना को अपने साथ चलने को बोला। अनय कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन रवि के जाने की बात सुनकर उसने उन्हें अपने साथ जाने का ऑफर दिया। सुनैना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसने रवि से आदित्य के बारे में पता करने को कहा। अनय ने बताया कि उसने पता कर लिया है और पैसेंजर लिस्ट में आदित्य का टिकट पहले से ही बुक था और वो फ्लाइट ले जा चुका है, इसका मतलब आदित्य यहाँ नहीं है। तुम्हारी जैसी दिखने वाली लड़की के साथ आदित्य सर जैसा इंसान रहेगा भी क्यों? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने तुमसे शादी कैसे कर ली, जरूर तुमने ही उन्हें इन सब में फंसाया होगा। सुनैना पहले ही आदित्य के जाने से इमोशनल थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नताशा के तानों से सुनैना अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो एयरपोर्ट के बाहर घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथ चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों आदित्य, क्यों, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? सुनैना रोते हुए बोली। नताशा तब तक वहाँ से चली गई थी। सुनैना को रोता देखकर वहाँ भीड़ जमा हो गई, कुछ लोग वीडियो और फोटो बनाने लगे। रवि सुनैना के सामने आकर उसे छिपाकर खड़ा हो गया और अनय की तरफ इशारा किया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि सुनैना को कैसे संभालें। वे दोनों सुनैना को ज्यादा नहीं जानते थे, वे आदित्य की वजह से ही उसे जानते थे। अनय तो आज पहली बार ही सुनैना से मिला था। रवि आदित्य और सुनैना के रिश्ते के बारे में थोड़ा ज्यादा जानता था, लेकिन अनय को उनके रिश्ते के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन सुनैना की हालत देखकर उसे समझ आ रहा था कि वो आदित्य से बहुत प्यार करती है। उन्होंने किसी तरह सुनैना को कार में बिठाया, वो बैक सीट पर और रवि और अनय आगे बैठ गए। सुनैना के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, उसकी हालत बहुत खराब थी।
रास्ते से पानी की बोतल खरीदकर रवि ने उसे दी। सुनैना ने पानी पिया और फिर सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आदित्य को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उसे लगा इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। फिर उसने नताशा की बातें सोची और उसे अपने और आदित्य के रिश्ते को लेकर इनसिक्योरिटी होने लगी। क्या नताशा सच कह रही थी? क्या आदित्य उसकी वजह से गया है? ये सब सोचकर सुनैना को बहुत बुरा लग रहा था। उसने मन ही मन कहा कि जब भी वो आदित्य से मिलेगी वो उससे ये सारे सवाल जरूर करेगी, उसे माफ नहीं करेगी और उसके लाइफ से दूर चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ये सब सोचते हुए सुनैना की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। क्रमशः